विवेक पैदा हो जाए, लेकिन टिकना भी चाहिए। विवेक का पैदा हो जाए उसको सद विचार से, उस विवेक को सत्संग से, प्राचीन ऋषियों के इतिहासों से, संतों के दर्शन प्रश्न सत्संग संत समागम से उस विवेक को सींचा जाए। जब तक विवेक प्रकट नहीं होता तब तक मनुष्य मनुष्य कहलाने के लायक नहीं रहता। लेकिन फिर शांत भी हो सकता है, क्योंकि अविवेक का प्रभाव ज्यादा रहता है। विवेकी लोग नपे तुले होते हैं। विवेक क्षण भर के लिए, एकाध कलाक के लिए आ जाए, लेकिन उसकी यदि सिंचाई न हो, घड़ाई न हो, जैसे बीज में से पौधा निकलता है, उस पौधे के अंकुर को यदि सिंचा न जाए, उसकी सुरक्षा न की जाए, तो जरा सा अधिक पानी से वो मुरझा जाएगा, जरा सा अधिक ताप से वो जल जाएगा, जरा सा तूफान और आंधी से वो सड़ भी सकता है, गल भी सकता है, टूट भी सकता है, बिखर भी सकता है। ऐसे ही जीवन में बहुत भाग्य से कभी कभी विवेक के अंकुर फूटते हैं। विवेक के अंकुर फूटने पर यदि उसकी सिंचाई न हुई, विवेक के अंकुर फूटने पर यदि उसकी सुरक्षा न हुई, तो वो विवेक फिर नाश हो जाता है। विवेक पैदा हो, फिर उसकी सिंचाई हो, उसकी सुरक्षा हो, तो विवेक रूपी अंकुर बड़ा होकर वैराग्य रूपी पेड़ बनता है। वैराग्य रूपी पेड़ होने पर उसमें जो फल लगने के फूल होते हैं, षट संपत्ति रूपी फूल उसमें प्रकट होते हैं और आत्म साक्षात्कार रूपी फल लगता है। विवेक रूपी अंकुर की सुरक्षा करो तो वैराग्य रूपी पौधा बनेगा। वैराग्य की सुरक्षा करो तो उस पौधे में तितिक्षा रूपी फल लगेंगे, तितिक्षा को सुरक्षित करेंगे तो मोक्ष रूपी आम फल लगता है। जैसे आम के पेड़ में केरी लगती है, आम लगता है, उसके पहले उसके मोर बैठते हैं, ऐसे ही मोक्ष प्राप्ति के पहले तितिक्षा, सम, दम, ईश्वर प्रणिधा, ये सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। सारे सद्गुणों की नींव, सारे फलों की नींव है विवेक। विवेक तब तक नहीं होता जब तक आदमी शुभ कर्म नहीं करता। कोई जन्म के शुभ कर्म यदि फल देने को तत्पर होंगे तो धन और यश मिलेगा, लेकिन अत्यंतिक सात्विक शुभ कर्म यदि फल देने को तत्पर होंगे तो विवेक पैदा होगा। पुण्य से यश और धन मिलता है, लेकिन महापुण्य से विवेक पैदा होता है। महापुण्य से विवेक पैदा होता है और महापुण्य महापुरुषों के पास ले जाता है। साधारण पुण्य धन यश में बर्बाद कर देता है समय, लेकिन महापुण्य जब प्रकट होता है तो महापुरुषों के पास ले जाता है। राजा बलि को महापुण्य उपलब्ध हुआ है। इस ब्रह्मांड रूपी अंड में नीचे के हिस्से में असुरों के बाहुबल रूपी दंडों पर आधारित महाराज्य विशाल, उस राज्य के विरोचन कुमार बलि राजा सर्वे सर्वा थे। ये उस बलि की कथा है कि जिसके द्वार पर भगवान ने पट्टावाला होना स्वीकार किया था। ये उस बलि की कथा है कि जिसके वहां भगवान की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी रक्षाबंधन के दिन राखड़ी बांधने को पहुंची थी। ये वह बलि है जिनके आगे भगवान को वामन रूप धारण करना पड़ा था। इतना ओजस्वी तेजस्वी महाबली विरोचन कुमार सोचता है, मैंने करोड़ों वर्ष भोग भोगे हैं, राज किए हैं, आप डर मत जाना, चौंक मत जाना, करोड़ों वर्ष कैसे कोई जी सकता है। हर जीव की हर स्थान की अपनी मर्यादा होती है, हर जीव की अपनी अपनी आयुष्य और अपना अपना काल है। जैसे शरीर में साधारण जंतु हैं, वो तुम्हारे एक श्वास में जन्मते भी हैं और तुम्हारे एक श्वास के समय में उनका आयुष्य पूरा भी हो जाता है, तुम्हारे एक दिन में उनका एक युग बीत जाता है, तुम्हारे एक सप्ताह में उनके न जाने क्या क्या बन और क्या क्या बिगड़ जाने वाले कार्य हो जाते हैं। जीव जीव के अपने देश की, अपने काल की, अपने आयुष्य की मर्यादा है। काल अथा है, जैसा जैसा जीव है, जैसी जैसी उसकी कल्पना है, ऐसे ऐसे उसके वर्ष होते हैं, ऐसे ऐसे उसके दिन होते हैं। कीड़ी का वर्ष और दिन कीड़ी जाने, बैक्टीरिया का वर्ष और बैक्टीरिया का जीवन बैक्टीरिया जाने, चूहे की आयुष्य और चूहे की गिनती चूहा जाने, अल्पमति के लोगों का गिनती और मान्यता अल्पमति के लोग जाने, राजाओं की मति राजा लोग जाने, योगियों की मति योगी जाने, भोगी की मति भोगी जाने। जैसी मति गति होती है ऐसा देश काल वर्षों की गिनती की जाती है। वो महापराक्रमी तेजस्वी विरोचन कुमार राजा बलि एक दिन दीवाल को टेक का देते हुए बैठा और खिड़की से आकाश की तरफ निहारता है। पृथ्वी तत्व से जल तत्व पवित्र होता है, जल से ज्यादा तेज पवित्र होता है, तेज से वायु तत्व पवित्र होता है, वायु से आकाश तत्व पवित्र होता है। उसलिए योगी जब निहारेगा तो ऊपर की ओर निराकार आकाश का दर्शन करने से माम और तम की कल्पनाओं की जो दीवाले हैं वो बिखर जाती है, राग और द्वेष हल्का होता है। आकाश की तरफ दृष्टि करके जो लोग ध्यान करते हैं या विचार करते हैं, उनके विचार विशाल विचार होते हैं। विशाल विचार में विवेक पैदा हो जाए कहना ही क्या। जरों के से निहारते हुए बलि राजा विचारते हैं कि हाय, मैंने हजारों वर्ष राज्य किया, भोग भोगा, लाखों बार इस पृथ्वी पर जन्मा, करोड़ों रुपये मैंने जोड़े और अरबों अरबों मैंने भोग भोगे, खरबों खरबों रुपये मैंने जोड़े, लेकिन हर जन्म के जोड़ को अजोड़ में छोड़ देना पड़ा, हर मित्र को छोड़कर अलविदा होना पड़ा। बलि विवेक से विचार करते हैं कि आखिर इस जीवन की गति क्या है। ऐसा कोई भोग नहीं कि मैंने नहीं भोगा हो, ऐसा कोई रस नहीं मैंने न लिया हो, ऐसा कोई रूप नहीं जो मैंने न देखा हो, ऐसा कोई शब्द नहीं जो मैंने न सुना हो, ऐसा कोई लेय पेय खाद्य चूष्य पदार्थ नहीं कि मैंने चूसा न हो, पिया न हो, खाया न हो, लेकिन इन इंद्रियों को जो कुछ खिलाया विष्ठा हो गया, जो कुछ दिखाया भूतकाल हो गया, जो कुछ पिलाया पेशाब हो गया, इंद्रियों को खिला पिला कर मेरा जीवन ही खाया पिया गया है, मैं अभागा ऐसे ही मारा जा रहा हूँ। अपने को राजा समझता हूँ, लेकिन इस पृथ्वी पर तो कई राजा आए। पृथ्वी की धूल की कणिका गिन सकते हैं, लेकिन राजाओं की गिनती नहीं हो सकती। मैं अपना समय ऐसे ही व्यतीत किए जा रहा हूँ। बलि राजा के चित्त में विवेक रूपी अंकुर पैदा होता है और बलि राजा उस अंकुर की ठीक से सिंचाई करते हैं। जैसे केसरी से जंगल में सैर करते तड़ाते मारते मारते कहीं कोई साधु पुरुष की कुटिया के नजीक आता है तो वो अपना विषिला स्वभाव छोड़ देता है। ऐसे ही बलि का मन भोग रूपी विषिले स्वभाव को छोड़कर वैराग्य रूपी विवेक रूपी अमृत का पान कर रहे हैं। वो सौभाग्यशाली नरेश विचार कर रहा है, ऐसा कौन सा रमणीय पदार्थ है जो सदा रहे और भोगने वाला भी सदा भोगता रहे। ऐसा कौन सा दृश्य पदार्थ है जो देखने की रुचि भी बना रहे और देखने वाला भी बना रहे, दिखने का पदार्थ भी बना रहे। ऐसा कौन सा सूंघने का सुगंध है कि वो सुगंध भी बनी रहे, सुगंध लेने वाली नाक भी बनी रहे और सुगंध लेने वाला भी सदा रहे। या तो सुगंध ही नष्ट हो जाती है, या तो रुचि नष्ट हो जाती है, या तो साधन ही नष्ट हो जाता है। देखत नयन चलो जग जाई, का मांगू कछु थिर न रहाई। आंखों के देखते देखते सब भोग पदार्थ बदल रहे हैं, आंखों के देखते देखते सब मित्र शत्रु के रूप में बदल रहे हैं, शत्रु मित्र हो रहे हैं और मित्र शत्रु दोनों ही मरे जा रहे हैं। इसी प्रकार का विवेक ज्ञान बलि को पैदा हुआ है। जिसके जीवन में विवेक नहीं वो मनुष्य नहीं गर्धर्व है। उसको बहुत कुछ बोझा उठाना पड़ता है। धन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, पद मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं, मित्र मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं, शत्रुओं से विजय पा लेना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो यह है कि जीवन में प्रखर विवेक आ जाए। जब तक जीवन में प्रखर विवेक नहीं आता तब तक वैराग्य रूपी चांद नहीं चमकता। जब तक वैराग्य रूपी चांद नहीं चमकता तब तक जीवन रूपी औषधि अमृत से परिपुष्ट नहीं होती। जब तक जीवन रूपी औषधि अमृत से परिपुष्ट नहीं होती तब तक जीवन जीवन नहीं वो मौत के मुंह में जा रहा है। उन अभागों को ही भोग रुचते हैं, उन अभागों को ही जगत का आह्लाद आकर्षित करता है जिनके जीवन में विवेक रूपी पौधा पैदा नहीं हुआ। जनक के जीवन में भी सिद्धों की कथा सुनने पर विवेक रूपी पौधा प्रकट हुआ था। जनक ने सींचा उस पौधे को, वैराग्य रूपी पुष्प लगे, तितिक्षा रूपी पुष्प लगे और ब्रह्म ज्ञान रूपी फल लगा। उस फल का आस्वादन लेकर जनक अमरत्व को उपलब्ध हुए। इसी प्रकार महाभाग विरोचन कुमार बलि राजा सोचते हैं, मैंने कितने ही भोग भोगे, मैंने कितने ही जन्म लिए, कितनी ही रानियों के हाव भाव से मैं अपने को सुखी करने की कोशिश किया, कितने ही जन्मों में मैं कईयों की पत्नी बना, कितने जन्मों में मैं पशु बना, कितने जन्मों में मैं पक्षी बना था, अभी मैं असुरों का सम्राट हूँ। हजारों लाखों मैंने भोग भोगे हैं लेकिन भोग खत्म हो गए, मेरी आयुष्य खत्म हो गई, लेकिन कोई सार तत्व को मैंने नहीं पाया। कबीर जी कहते हैं, क्या करिए क्या जोड़िए। विरोचन सोचते मैं क्या क्या किया क्या क्या जोड़ा लेकिन अंत में कुछ हाथ नहीं आया। अनुभवी संत कहते हैं, क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन का आज, थोड़े जीवन के लिए मैं क्या क्या करूं, क्या क्या जोड़ूं, कब तक जोड़ूंगा, कब तक करूंगा। ऐसा विवेक पैदा नहीं होता। वो विद्वान भी मूर्ख है, धनवान भी निर्धन है, सत्तावान भी दरिद्र है, ना समझ है। जब तक विवेक नहीं होगा तब तक वैराग्य प्रगाढ़ता को प्राप्त नहीं होगा। जब तक वैराग्य परिपक्व नहीं होता तब तक षट संपत्ति का स्वाद नहीं आता। षट संपत्ति जीवन में जब तक महत्व नहीं रखती तब तक आत्मज्ञान भी फल परिपक्व नहीं होता। जब तक आत्मज्ञान रूपी फल परिपक्व नहीं होता तब तक ये जीव बिचारा अभागा है। जैसे विधवा स्त्री का श्रृंगार निरर्थक है, निवरा आदमी का खाना पीना और जीना व्यर्थ है, ऐसे ही विवेक बिना के साधक की साधना भी व्यर्थ हो जाती है। बलि राजा को विवेक पैदा हुआ है। बलि सोचते हैं कि हे मेरे मन, तू कब तक जिएगा, कब तक खाएगा, कब तक जोड़ेगा और जोड़ जोड़ कर आखिर कहां ले जाएगा, कहां रखेगा। कबीर जी कहते हैं, क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धनराज। सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, देह को भी छोड़कर जा रहे हैं, गेह माना घर को भी छोड़कर जा रहे हैं, धन को भी छोड़कर जा रहे हैं, राज को भी छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन हे अविवेकी मानव, हे विवेक शून्य नराधमो, तुम किसको पाने के लिए लगे हो, किसको जोड़ने के लिए लगे हो, किसको रखने के लिए लगे हो? जो कुछ तुम लगे हो वो सब छोड़कर कहीं जा रहे हैं, तुम कितना संभालोगे बाबा, जरा तो सोचो। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धन राज। युधिष्ठिर से यक्ष पूछता है कि आश्चर्य क्या है, महाभारत की कथा। चारों भाइयों को उस यक्ष ने मार डाला था, क्योंकि वो ठीक उत्तर न दे पाए। यक्ष का प्रश्न था, जो प्रश्न का उत्तर दे वो सरोवर का पानी पिए, और जो उत्तर न दे सके वो उसका जीना व्यर्थ है, उसे मैं अभी मार डालूं। सचमुच जो विवेकी नहीं, जो जीवन के रहस्य को नहीं जानता, उसका जीना व्यर्थ है। यक्ष मार ले, चाहे श्वास टूट जाए, चाहे हार्ट फेल हो जाए, उस आदमी का मरना उचित है जिसके अंदर विवेक नहीं है। उसकी श्वास लेना बेकार है, वो भार भूया, वो पृथ्वी पर भार रूप है, भूमि पर वो भार रूप है। मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वो मृग है, व्यर्थ का खाता है, व्यर्थ की विष्ठा फेंकता है, व्यर्थ की श्वास खराब करता है, वायुमंडल का श्वास लेता है, बदबू वाला श्वास छोड़ता है, शुद्ध श्वास लेता है, अशुद्ध छोड़ता है, शुद्ध अन्न खाता है, अशुद्ध विष्ठा छोड़ता है, शुद्ध जल पीता है, अशुद्ध मूत्र छोड़ता है, शुद्ध भूमि पर बैठता है उसको अशुद्ध बना देता है, शुद्ध खुराक खाता है, अपान वायु अशुद्ध करता है। वो पृथ्वी पर भार रूप है, जिसके जीवन में विवेक नहीं है, जिसके जीवन में वैराग्य नहीं है, जिसके जीवन में आत्मज्ञान की जिज्ञासा नहीं है, जिसने कभी महापुरुष का दर्शन करके अपना जीवन धन्य करने का मौका न लिया, वो सचमुच पृथ्वी पर भार रूप है। उसको यक्ष मारे चाहे मौत मारे, लेकिन वो मरना ही चाहिए वो आदमी। और ऐसे आदमी दिन में न जाने कई बार मरते रहते हैं, ऐसे आदमी कई बार दिन में दुख भोगते रहते हैं, अशांत होते रहते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, उस महाबली को जिसके द्वारपाल साक्षात भगवान पुंडरीकाक्ष रह चुके थे, उस महाबली को विवेक पैदा हुआ है। बलि कहता है कि अब मैं क्या भोगूं। कबीर जी कहते हैं, क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धनराज। हाड बड़ा हरि भजन कर, तेरी हड्डियां लंबी चौड़ी हुई, शरीर बड़ा हुआ, पृथ्वी पर बोझा बढ़ाने के लिए बड़ा नहीं हुआ, अन्न को अशुद्ध करने के लिए बड़ा नहीं हुआ, जल को अशुद्ध करने के लिए बड़ा नहीं हुआ, वायु को अशुद्ध करने के लिए बड़ा नहीं हुआ, तेज को अशुद्ध करने के लिए बड़ा नहीं हुआ। हाड़ बड़ा हुआ है हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, तेरे पास धन है, धन केवल रुपए पैसा ही धन नहीं है, मकान भी धन है, गोधन है, हाथियों का भी धन है, रत्नों का भी धन है, बुद्धि भी एक धन है, मित्रता भी एक धन है, वस्त्र भी एक धन है, अकल भी एक धन है। ये तो छोड़ के मरेगा, उसके पहले किसी को देकर परमात्मा में मर। हाड बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ए। तेरे जीवन का फल भैया यही है। तू 5 वर्ष से यदि बड़ा हो गया है, तेरा कर्तव्य है प्रकृति के ऊपर विजय पाना, प्राकृतिक स्वभाव से अपना दिव्य स्वभाव बनाना। 100 छोटे पुण्य एक महापुण्य होता है, 100 छोटे पाप एक महापाप होता है। अनंत पाप अनंत पुण्य करते करते आए। पुण्यों का फल स्वर्ग सुख भोगना है, पापों का फल तिरेग आदि हल्की योनियां भोगना है। अब तू पाप मत कर, तिरेग योनि में मत जा, पुण्य कर लेकिन पुण्य का फल भोग कर फिर मर मत। उसलिए पुण्य का फल परमात्मा को अर्पण कर ताकि तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाए। तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा तब उसमें विवेक पैदा होगा। बलि राजा ने सर्वस्व सर्वेश्वर को दे दिया, उसलिए सर्वेश्वर द्वारपाल हुए। एक रखड़ी के धागे के निमित्त लक्ष्मी जी को सर्वेश्वर का दान कर दिया। सर्वेश्वर को सर्व का दान किया और फिर एक छोटे से धागे को स्वीकार करके सर्वेश्वर को भी अर्पण कर दिया। इतना बड़ा निष्काम कर्म बलि राजा ने किया, उसलिए बलि राजा के अंदर परम विवेक पैदा हुआ है। जो देता है उसके अंदर में विवेक आता है, जो देता है वो प्रभु को पाता है। हाड बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ए। बलि जीवन के फल को उपलब्ध हो रहे हैं। बलि कहते हैं कि ऐसा कौन सा भोग है कि मैंने न भोगा हो, ऐसा कौन सा रूप और लावण्य है नारियों का जो मैंने न देखा हो, ऐसे कौन से युवतियों के अंग हैं जो मैंने चाहते और चूसे और देखे न हो। हाय रे मैं अभागा, इस चमड़े में, इस रक्त में, इस वात और पीत के भरे हुए कफ के शरीर में मैं उलझ गया, इस नश्वर भोग में मैं शाश्वत को खो बैठा। ऐसे मेरे सौभाग्यशाली दिन कब आएंगे कि मैं सर्व को छोड़कर सर्वेश्वर के ध्यान में मग्न हो जाऊंगा। कौन पत्नी अगले जन्म की पत्नी किस काम आई, इस जन्म की पत्नी किस काम आएगी, अगले जन्मों के पति किस काम के, इस जन्म का पति भी कब तक काम देगा। हाय रे मैं अभागा, बेमौत मारा गया, मैं अविवेक पूर्ण अपने को भोगों में उलझा रहा था और अपने को सम्राट मान रहा था। मैं सम्राट तो नहीं, मैं राजा तो नहीं बना, लेकिन मैं तो विषयों का भिखारी हो गया, मैं तो भोगों का भिखारी हो गया। कभी कुछ खाने के लिए दौड़ा, कभी कुछ देखने के लिए दौड़ा, कभी कुछ सुनने को दौड़ा, कभी कुछ सुनाने को दौड़ा, कभी कुछ पाने को दौड़ा, कभी कुछ खोने को दौड़ा। ये सारा जीवन अनंत जीवन, हजारों जीवन, लाखों जीवन, करोड़ों जीवन मैंने खो दिए। खिड़की खुली आकाश के तरफ निहार कर परम विवेक को उपलब्ध हुए हैं। अपने मन को समझा रहे हैं बलि राजा के ऐसा कौन सा पद है जिसको पाने से आत्मी कृत्य कृत्य हो जाता है, ऐसा कौन सा परम भोग है जिसको भोगने से फिर जन्म मरण के भोग समाप्त हो जाते हैं। सोचा कि मैं निगुरा भोग भोगने में लगा हूँ, मैं मनमुख संसार को सुव्यवस्थित करने में लगा हूँ, मैं सचमुच असुरों का दैत्य असुर ही रह गया, मेरी दैत्य बुद्धि भोगों में लंपट क्यों है, अभी तक मुझे वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा सोचते सोचते वो भाव विभोर हो जाता है, आंखें बंद करके परमात्मा को पुकारता है। विवेक होने के बाद जब परमात्मा को आदमी पुकारता है तो वो अंतर्यामी परमात्मा सत प्रेरणा देता है। ध्यानस्थ होकर आदमी जब परमात्मा को भीतर पुकारता है तो परमात्मा सत प्रेरणा देता है। परमात्मा यदि कुछ कहना चाहेगा तो किसी मनुष्य के द्वारा कहेगा। जिसके द्वारा परमात्मा बोलता है उसको सदगुरु कहा जाता है। जिसके द्वारा सत्य की कुछ संवेदना होती है, जिसके द्वारा सत्य का कुछ संदेश दिया जाता है उसे सदगुरु कहा जाता है। बलि राजा सतगुरु के इंतजार में, सतगुरु की खोज में, सतगुरु को पाने के लिए सुनसान बैठे हैं। मन ही मन भाव जगा कि अब इन नश्वर पदार्थों को मैं क्या जोड़ूंगा, ये छोड़ जाने वाले धन को मैं क्या रखूंगा, ये मर जाने वाले शरीर को मैं कब तक संभालूंगा और किस जीवन के लिए रखूंगा। अब इस शरीर की सार्थकता, इस जीवन की सार्थकता, इस बुद्धि की सार्थकता है कि सद्गुरु का ज्ञान उपलब्ध हो जाए, सद्गुरु के द्वारा सत्य समझ में आ जाए, उस सत्य स्वरूप को पाकर असत्य संसार से तर जाऊं। अस्तो मा सद गमया, असत्य में से हटकर सत्य में मेरा गमन हो जाए। तमसो मा ज्योतिर्गमया, तम माना अंधकार, अज्ञान, अज्ञान से ही काम क्रोध पोषे जाते हैं, अज्ञान से ही अहंकार का पोषण होता है, अज्ञान से ही जन्म मरण के चक्र को वेग मिलता है, अज्ञान से ही आदमी अपना और पराया शत्रु बनता है, ज्ञान से तो आदमी अपना और सर्व का मित्र हो जाता है। ऐसे अज्ञान को तोड़ फोड़ के फेंकने वाले ज्ञानदाता गुरु कब मिलेंगे। इस नश्वर देह में से हटकर शाश्वत आत्मा में स्थिति कब होगी, ऐसा वो महाबली सोचता है। सोचते सोचते शांत होता है, शांत स्वरूप में, शांत मन में सद प्रेरणा प्राप्त करता है कि विरोचन को बुलाए, विरोचन का आवाहन किया। जिसका मन सूक्ष्म हो जाता है, जो ध्यान करता है उसके मन में आवाहन करने का सामर्थ्य आ जाता है। नाद होकर बैठे, धूप दीप जलाकर शांत होकर बैठे, चाहे तो अपने गुरु को भी बुला सकता है, चाहे तो अपने मित्र को बुला सकता है, चाहे तो अपने शत्रु को भी बुला सकता है। लेकिन ये बुलाने का काम तब तक रहता है जब तक जिससे बुलाया जाता है उसको नहीं जानता। जिससे बुलाया जाता है उस स्वरूप को जो जान लेता है फिर वो बुलाने की झंझट में नहीं पड़ता। बलि राजा न मूर्ख थे न ज्ञानी थे, मूर्खता को पार कर चुके थे लेकिन ज्ञान को उपलब्ध न थे, मध्यम अवस्था थी। बलि राजा अपने पिता विरोचन को बुलाते हैं, विरोचन का चिंतन करते हैं। सारी सृष्टि में एक तत्व है, तुम जिसका चिंतन करते हो, अनेकत्व विचार हटाकर एकाकार चिंतन जिसका भी करते हो, वो वस्तु, वो स्थिति, वो व्यक्ति, वो पदार्थ, वो परिस्थितियां पैदा हो जाती है, क्योंकि तुम सत्य संकल्प हो, क्योंकि तुम आत्मा हो, सत्य संकल्प हो, तुम्हारे संकल्प बिखरे हुए संकल्प होते हैं, तब तक तुम तुच्छ होते हो, साधारण जीव होते हो। जब तुम मौन होते हो, शांत होते हो, अंतर्मुख होते हो, तब तुम साधारण व्यक्ति नहीं होते हो। तुम्हारी संकल्प शक्ति ईश्वरी संकल्प शक्ति के करीब करीब हो जाती है। तुम्हारा जीवन ईश्वरी जीवन, तुम्हारा श्वास महापुरुषों का श्वास हो जाता है, जब तुम शांत स्वरूप परमात्मा में डूबने के लिए उत्कंठा पैदा करते हो। बलि राजा को उत्कंठा पैदा हुई, जिसको परमात्मा प्राप्ति की उत्कंठा पैदा होती है, ऐसा आदमी जिस वक्त जैसा उसको अनुकूल होता है, उसका जिस काम में, जिस व्यवहार में, जिस परिस्थिति में हित होता है, वह परिस्थिति की रचना हो जाती है।